प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। ऋषभ नाथ जी का तुमको वैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। कैसे हुए ये वैरागी हम ये बतलाते हैं, हाँ ये बतलाते हैं। ऋषभ नाथ जी का तुमको वैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं।
ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा
प्रथम जिनेन्द्र है आदिनाथ जी, ऋषभ नाथ भगवान। नाभि राय और मरुदेवी की सर्वोत्तम संतान। चैत्रवदी नवमी को जन्मे नगर अयोध्या धाम। आदिनाथ भगवान का पहले ऋषभ नाथ था नाम। ऋषभ नाथ जी अंक गणित का करते हैं विस्तार। प्रतिदिन सबको लिखना सिखाते बीज गणित का सार। राजा प्रजा सुखी थे सारे, सबको था संतोष। उनके राज्य में दोषी नहीं थे हर कोई निर्दोष। नगर निवासी उत्सव और उल्लास मनाते हैं, तुमको बतलाते हैं। ऋषभ नाथ जी का तुमको वैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं।
ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान।
श्री आदिनाथ का जन्म अयोध्या के राजा नाभिराय के घर हुआ था और उनकी माता का नाम मरुदेवी था। जब उनका जन्म हुआ तो सारे अवध निवासी हर्षोल्लास से भर गए। ऋषभ नाथ ने सबको पढ़ना लिखना सिखाया, धर्म कर्म करना सिखाया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। परंतु एक बार उनके नगर में अकाल पड़ जाता है, कल्प वृक्ष विहरने लगते हैं और प्रजा हाहाकार कर उठती है और दरबार में आकर अपना दुखड़ा सुनाती है।
कल्प वृक्ष जब लगा बिछड़ने, प्रजा हुई बेहाल। आते हैं दरबार में सारे, कहते अपना हाल। आप ही राह निकाले कोई, हम सब हैं अज्ञान। आप हमारे मात पिता, हम हैं संतान समान। ऋषभ नाथ उनका सब संशय दूर भगाते हैं, उन सब को फिर सूर्य चंद्र का ज्ञान कराते हैं। खेती करना, फसल उगाना सब समझाते हैं। नियम न्याय और आदि का उनको दंड बताते हैं। ऋषभ नाथ अपनी प्रजा का साथ निभाते हैं, हाँ साथ निभाते हैं। ऋषभ नाथ जी का तुमको वैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं।
ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा
ऋषभनाथ अपनी प्रजा को खेती बाड़ी का काम करना सिखाते हैं, न्याय अन्याय धर्म एवं अधर्म में भेद बताते हैं। ऋषभदेव के दो पुत्र भरत और बाहुबली और पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी, उनको भी उन्होंने शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए।
पुत्र रत्न दो ऋषभनाथ के, शोभित है दरबार। बाहुबली और भरत है दोनों सुंदर राजकुमार। दो पुत्री है ब्राह्मी सुंदरी आदिनाथ के आंगन, झूम रहा है हंसी खुशी से ऋषभनाथ का जीवन। एक बार करवाते हैं वो नृत्य का आयोजन, बैठ के सब दरबार कर रहे नृत्य का अवलोकन। अल्पायु निर्जंगना की थी नाच रही दरबार, कच्ची कली सी थी वो अप्सरा गई नाच के हार। गिर गई वो कम उम्र अप्सरा, सत्य बताते हैं हम, सत्य बताते हैं आदिनाथ जी का तुमको वैराग दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान।
उस अप्सरा की आयु बहुत कम थी, नृत्य करते करते थक जाती है, उसकी सांसें उखड़ने लगती है, मूर्छित होकर वो भरी सभा में गिर जाती है। ये देखकर दरबार में उपस्थित सभी हैरत में पड़ जाते हैं। ऋषभनाथ जी के हृदय पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, चिंता के गहरे सागर में गोते लगाने लगते हैं।
जाग उठा वैराग उसी क्षण आदिनाथ के मन, किसी काम का नहीं हमारा नश्वर ये जीवन। बेटों को बुलवा के उनको सब समझाते हैं, राजपाट दोनों में बराबर वो बटवाते हैं। छोड़ के सभी झंझट संसारी वन को जाते हैं, राजा हजारों मिलके उनके संग हो जाते हैं। कठिन तपस्या करने लगे वो कठिन करे तपयोग, उनके साथ जो आए थे वन भाग गए वो लोग। गर्मी सर्दी आंधी वर्षा सब सह जाते हैं, हाँ सब सह जाते हैं, आदिनाथ जी का तुमको वैराग दिखाते हैं, वैराग दिखाते हैं।
ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान।
आदिनाथ के साथ जितने लोग आए थे वन में तपस्या करने, सभी एक एक करके वापस चले जाते हैं, परंतु आदिनाथ जी तपस्या में लीन तल्लीन टस से मस नहीं होते। आंधी तूफान सर्दी गर्मी बरसात सब सहन करते हैं, वो दिगंबर धारी बन जाते हैं।
भूख प्यास से व्याकुल हो भागे थे जितने लोग, लिया छुपा चल पत्तों से अंगों को अपने वो। फल आदिक खा भूख मिटाई, भाग लिया वन छोड़, सारे के सारे भाग लिए फिर अपने घर की ओर। छह महीने तक तप में डूबे रहे आदिनाथ, पता चला ना कब दिन निकला और हुई कब रात। छह महीने तक भूखे प्यासे रहते आदिनाथ, चले आहार को करने खातिर छह महीने बाद। भोजन की विधि उनकी कोई समझ न आता है, हाँ समझ न आता है, आदिनाथ जी का तुमको वैराग दिखाता हूँ, वैराग दिखाता हूँ।
ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान।
जब वो आहार के लिए निकले तो किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है और उनकी विधि क्या है। कोई उनको धन देना चाहता था तो कोई उन्हें वस्त्र देना चाहता था। आदिनाथ चुपचाप चले जा रहे थे, बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे।
6 महीने तक भटके पर मिला नहीं आहार, पहुंच गए हैं चलते चलते श्रेयांश के द्वार। श्रेयांश राजा को तुरंत ही पिछला हुआ भवयान, पड़ गहना श्रेयांश ने बिना विलंब किया। गन्ने का रस श्रेयांश से मुनिवर पाते हैं, सारी दुनिया को फिर वो उपदेश सुनाते हैं। अंत समय में मोक्ष मिला वो स्वर्ग को जाते हैं, चांद खेड़ी में सब जाकर वो दर्शन पाते हैं। हम मान तुंग की बार बार जयकार लगाते हैं, सब दर्शन पाते हैं। सुखदेव जैन श्री आदिनाथ को शीश नवाते हैं, सब दर्शन पाते हैं।
ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो।